श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतस् थेम युक्त तमामतः. The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshiping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect.
Shri Bhagavan ne kaha, jo mere niji roop ke upar apne man ko kendrit karte hain aur hamesha meri aradhana mein lage hain divya shraddha ke sath, wo mere dwara पूर्ण माने जाते हैं.
Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In answer to Arjuna's question, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga.
अर्जुन के प्रश्न के जवाब में यहाँ पर कृष्ण साफ बता रहे हैं कि जो उनके निजी रूप पर ध्यान करते हैं और उनकी आराधना करते हैं वही योग में सबसे पूर्ण माने जाते हैं.
For one in such Krishna consciousness, there is no material activities because everything is done for Krishna.
जो व्यक्ति इस कृष्ण चेतना में है उसके लिए कोई भौतिक कार्य नहीं है क्योंकि वह सभी कुछ कृष्ण के लिए कर रहा है.
A pure devotee is constantly engaged.
एक शुद्ध भक्त हमेशा संलग्न रहता है.
Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Krishna, or sometimes he cooks prasadam, or goes to the marketplace to purchase something for Krishna, or sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is in full samadhi.
कभी वो कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण के बारे में पुस्तक पढ़ता है, कभी प्रसाद बनाता है, कभी मार्केट में कृष्ण के लिए खरीदी करने जाता है, कभी बर्तन धोता है. जो भी करता है वो एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं छोड़ता और इस कार्य को समाधि कहा जाता है.
The Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshiping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect.
Shri Bhagavan ne kaha ki jo mere mein man lagate hain niji roop mein aur meri aradhana mein lage hain divya shraddha ke sath, wo mere dwara purna mane jate hain.
There are many opinions of what is perfection.
लोगों के अलग अलग मतभेद हैं कि पूर्णता किसको कहा जाता है.
In this particular verse from Bhagavad Gita, Krishna, who is the absolute truth, is explaining very clearly what is perfection.
भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं वो बता रहे हैं कि पूर्णता क्या है.
I am very, very grateful for this blessed opportunity to be with all of you this evening in this very holy Tirtha, Nasik.
आज मुझे आप सबके बीच में नासिक जैसे पवित्र स्थान में आने की मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ.
The glories of Panchavati are declared in many of our most illustrious Vedic scriptures.
वैदिक शास्त्रों में इस महत्वपूर्ण स्थान के महात्म्य के बारे में वर्णन किया गया है.
The Puranas declare, the Ramayana declare, the glories of this very sacred place.
पुराणों में और रामायण में इस पवित्र स्थान के महिमा का वर्णन मिलता है.
Many of the greatest acharyas of our history have come to worship the holy land of Nasik. पंचवटी
इतिहास के बहुत सारे आचार्य इस पवित्र स्थान नासिक पंचवटी में आराधना करने आए.
It is the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu personally came. And in the ecstasy of divine love, remembered his previous incarnations and the leelas that he performed here.
यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे और दिव्य प्रेम में उन्होंने अपने पिछले अवतार और जो लीलाएं की थी यहाँ पर उनको स्मरण किया।
At Kala Ram Mandir, Ram Sita Lakshman lived so peacefully.
यहाँ पर काला राम मंदिर में राम सीता लक्ष्मण शांतिपूर्वक रहे।
It was at Tapovan that Surpanaka came to harass Ram and Sita, and Sri Lakshman, by his very expert surgical abilities, he severed the nose and ears of the sister of Ravana.
और तपोवन में जो जब शूर्पणखा आई और उस समय लक्ष्मण जी ने अपनी सर्जिकल प्रयास अपने ऑपरेशन से उनके नाक और कान को काट दिया।
After this, the brothers of Surpanaka, Kara and Dushan, they attacked Lord Ram with tens and thousands of soldiers.
उसके बाद उनके भाई खर और दूषण 10,000 सैनिकों के उपासात राम पर आक्रमण करने लगे।
Lord Sri Ram asked Lakshman to bring Sita into Sita Kufa, the underground cave, for protection.
और भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहा कि आप सीता को सीता गुफा में लेकर जाइए।
Lakshman personally guarded that cave.
और लक्ष्मण जी स्वयं उस गुफा की सुरक्षा कर रहे थे।
And Lord Ramchandra displayed his supreme opulence of strength by completely annihilating the entire army of Kara and Dushan.
और भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति का ऐश्वर्य दिखाया, पूरे जो सेना थी उसका सर्वनाश कर दिया।
He killed Trishursha, Kara and Dushan also.
Kara और दूषण का उन्होंने वध कर दिया।
Only one man remained, and that person ran back to Sri Lanka to tell Ravana what had happened.
और एक ही व्यक्ति जीवित रहा, वो रावण को लंका में जाकर बताने के लिए कि क्या हुआ।
And then Surpanaka herself went back to Lanka.
और फिर शूर्पणखा स्वयं भी लंका वापस गई।
She incited Ravana in his two most vulnerable qualities.
उसने रावण के दो जो उसकी कमियां थी उसको उत्तेजित किया।
काम एंड क्रोध।
वो है काम और क्रोध।
भगवद गीता says काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विजिनमिह वैरणम। It is kama, lust only, which is later transformed into anger, wrath, krodha, which is the all-devouring sinful enemy of this whole world.
ये काम ही है जो कि बाद में क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है इस दुनिया का।
One who can control these tendencies is considered a man of God.
जो व्यक्ति इनको वश में किया जा सकता है, वो भगवत भावना माना जा सकता है।
One who cannot control these tendencies destroys his own life.
जो इनको वश में नहीं कर सकता, वो अपने पूरे जीवन का नाश कर बैठता है।
त्रिविदां नरकाशितं द्वारं नाशितं आत्मना कामक्रोधस्ततालोभस्तस्मदेतत्रयं त्यजेत। Krishna says in Sri Gita, there are three gates that lead to hell.
भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि नरक की ओर जाने के तीन दरवाजे हैं।
Lust, anger, greed, and every sane man should give them up, for they lead to the degradation of the soul.
काम, क्रोध और लोभ, और इनका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि आत्मा का पतन कराते हैं।
So, first, Surpanaka showed Ravana her nose and ears, which were no longer there.
फिर शूर्पणखा ने रावण को अपने नाक और कान दिखाए जो वहां पर नहीं थे।
Then she explained that you are the ruler of the Rakshasas. I am your sister. How dare you allow this insult come to me? You must destroy this rascal Ram.
उन्होंने बताया कि आप जो है राजा हो और मैं आपकी बहन हूँ आप ये कैसे होने दे सकते हैं? आपको राम का सर्वनाश करना चाहिए.
यू आर एन इम्पिटेंट इम्पोटेंट कावर्ड. You are just sitting there enjoying on your throne when this disgrace has come to your own Rakshasad race.
आप एक नपुंसक कायर हो और जबकि आपके वंश के ऊपर इतना अपमान हुआ है.
He became angry as fire.
और वो अग्नि के समान क्रोधित हो उठे.
Then she explained the beauty of Sita.
और फिर वो सीता की सुंदरता का वर्णन करने लगी.
She is a queen fit only for you, Ravana.
ये ऐसी रानी हैं जो सिर्फ आपके काबिल हैं.
When she described in great detail the qualities of the charms of Sita, Ravana became overwhelmed with these two great enemies, lust and anger.
जब उन्होंने सीता की सुंदरता का वर्णन किया तो रावण ने काम और क्रोध से प्रभावित हो उठे.
And he made a plan. He brought his old friend Maricha.
उन्होंने योजना बनाई, अपने मित्र मरीचा को बुलाया.
He went to Maricha's hermitage and said, Maricha, I want you to help me by taking the form of a golden deer and attracting Ram and Lakshman away from Sita. Then I will kidnap her.
उन्होंने से बताया कि तुम एक सोने मृग के रूप में जाओ और फिर भगवान राम को आकर्षित करो, उस समय मैं फिर सीता का हरण करूंगा.
Maricha said, I'll do anything but not that.
मारीचा ने कहा, मैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता.
राम इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ.
क्योंकि राम परम सत्य हैं.
He is unconquerable.
वे अजीत हैं.
He is the source of everything.
वे सब चीजों के स्रोत हैं.
I have already challenged him twice and been completely defeated.
मैंने दो बार उनको पराजित करने का प्रयास किया है लेकिन मैं हार गया हूँ.
I cannot stand before him.
मैं उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता.
The first time at Vishwamitra Muni's yagya, I was harassing and he threw an arrow in my chest. And it threw me 800 miles into the ocean.
विश्वामित्र के यज्ञ के समय मैं जब वहां पर पहुंचा तो उन्होंने ऐसा तीर मारा कि मेरे को 800 मील दूर फेंक दिया.
The next time I disguised as myself as a deadly stag, and he conquered me so terribly.
और अगली बार मैं जब हिरण के रूप में आया तब भी उन्होंने मुझे पराजित कर दिया बुरी तरह से.
In fear of him, I have retired from all Rakshasa activities.
उनके डर के मारे मैंने सब राक्षसी कार्यों को त्याग दिया है.
I am living here as a sage.
मैं एक संत के रूप में यहाँ रह रहा हूँ.
In constant fear of Ram.
और राम का हमेशा मुझे डर लगा रहता है.
Wherever I look, I see Ram.
जहाँ भी मैं देखता हूँ मुझे राम दिखाई पड़ते हैं.
Fear strikes my heart.
और मेरे हृदय में डर पैदा होता है.
There is a Ram must be behind that tree. Ram must be behind that blade of grass. Ram must be in that cloud. Ram is coming to get me. Day and night, I'm in fear of Ram.
दिन रात मुझे राम का डर रहता है. बादल के बीच या घास के तिनके में सब जगह पे मुझे राम का भय नजर आता है.
And if anyone says a word that begins with the letter R, I think he's going to say the name Ram, and immediately fear comes into my heart.
जब कोई र से कोई शब्द कहता है तो मुझे लगता है कि शायद वो राम बोलेगा और सुनके मुझे डर लग जाता है.
Please enjoy your capital of Sri Lanka, but don't go near Ram. He will be the destruction of you and your entire dynasty.
आप लंका का आराम से भोग करिए लेकिन राम के पास मत जाइए नहीं तो आपके और आपके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा.
So Ravana told Maricha that I am the all powerful.
रावण बोलने लगा मरीच को कि मैं सर्वशक्तिशाली
हूं. You have lost your intelligence.
आपको आपकी बुद्धि खो गई है.
Either you do what I say or I will kill you right now and eat your flesh.
या तो आप मेरी आज्ञा पालन करो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा.
So Maricha agreed.
मरीच ने स्वीकार किया.
So they came here.
वो यहाँ पर आए
पंचवटी में. And it was here that Maricha began to dance around in the form of a beautiful golden deer.
और मरीच एक सुंदर सोनेरी मृग के रूप में नृत्य करने लगे.
And Sita said, Oh Ram, that deer, I have never seen such beautiful deer with so many colors.
और सीता देवी ने कहा कि हे श्री राम, ऐसा सुंदर मृग इतने सुंदर वर्णों वाला मैंने कहीं नहीं देखा.
This is our last year in exile. Capture that deer and we will bring him back and he will be my favorite pet in my palace garden of Ayodhya.
ये हमारे वनवास का आखिरी वर्ष है, उसको आप लेकर आइए और फिर ये अयोध्या में मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी.
Ram always wanted to please Sita.
राम हमेशा सीता को प्रसन्न करना चाहते थे.
But Lakshman said, no Ram, don't go.
लेकिन लक्ष्मण ने बताया नहीं, ऐसा मत करो.
That's no word, no. I know the 8,400,000 species of life, and that's not one of them.
मैं 84 लाख योनियों को जानता हूँ, लेकिन उनमें से कोई एक नहीं है.
This is Maricha disguised as a deer, just to take us away so Ravana can steal Sita.
ये जो है मरीच है जो कि मृग के रूप में आया है जिससे कि रावण सीता का हरण करके ले जा सके.
We should not go.
आपको नहीं जाना चाहिए.
But Sita said, "Oh no, Ram, this is such a beautiful, charming deer."
सीता ने कहा कि नहीं राम ये तो बहुत सुंदर मृग है.
Please, please bring me this deer.
कृपया कृपया आप इसको लेकर आइए.
So who could not want to satisfy Sita Devi?
कौन है जो सीता देवी को संतुष्ट नहीं करना चाहेगा?
It was here that Ramchandra told Lakshman, "You stay here, and I will go get deer."
और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा आप यहीं पर ठहरो और मैं जाकर हिरण को लेकर आता हूँ.
So he went.
तो वो गए इस तरीके.
Here at Panchavati forest, he chased the deer deeper and deeper into Dandakaranya.
और वो हिरण का पीछा करने लगे दंडकारण्य वन में.
Then Ram understood that this is actually Maricha. Lakshman was speaking truth.
और राम समझ गए कि ये मरीच है. लक्ष्मण जो कह रहे थे वो सत्य बात थी.
He already knew, but he was playing the leela that he didn't know.
उनको तो पहले से मालूम था लेकिन लीला कर रहे थे कि मुझे नहीं मालूम.
This is how the Lord attracts our hearts.
इस तरीके से भगवान हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं.
So he shot an arrow.
तो उन्होंने तीर चलाया.
And that arrow entered into the body of Maricha.
और वो तीर मरीच के शरीर में घुस गया.
He jumped way, 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 way high up in the sky.
वो ऊपर आकाश में उछल पड़ा.
And he called out in perfect imitation of Lord Rama's voice, "Sita, Lakshman, help!"
और वो भगवान राम की आवाज में नकल करते हुए बोलेंगे, "लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता, मेरी मदद करो."
And then he fell to the ground, but not any longer as a beautiful deer, but as the terrible, gigantic form of the Rakshasa Maricha.
और वो गिर पड़े अब मृग के रूप में नहीं है कि बहुत ही भयंकर बड़े विशाल राक्षस के रूप में.
Meanwhile, Sita, when she heard that voice, she said, "Lakshman, go help Ram. He's in need."
सीता देवी ने आवाज सुनने पर लक्ष्मण से कहा, "जाओ, जाओ, उनको मदद की आवश्यकता है."
Lakshman said, "He's not in need."
लक्ष्मण ने कहा, "नहीं, नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं."
That's Maricha. He's imitating Ram's voice. Just to take me away from you.
वो मरीच है जो कि नकल कर रहा है जिससे कि मेरे को आपसे दूर ले जा सके.
Ram has given me order to stay. I am staying.
राम ने मुझे आज्ञा दी है यहाँ रहने के लिए. मैं यहीं पर रहूँगा.
Sita said, "No, no. Ram's my consort. He's our life and soul. He's your brother. He's in trouble. He needs you. He called for you. Go now. Go."
सीता देवी बोलने लगे कि वो आपके भाई हैं. आपको मदद के लिए बुला रहे हैं. आप जाओ इसी समय. जाओ जल्दी जाओ.
Lakshman said, "I am not going. Ram is in no danger."
लक्ष्मण ने बताया कि मैं नहीं जा रहा. राम को कोई खतरा नहीं है.
"I will stay to protect you."
मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहीं रहूंगा.
Sita said, "Oh, now I know why you came to this forest with us."
फिर सीता देवी कहने लगी, अब मुझे पता चला आप यहाँ क्यों आए जंगल में.
"You were just waiting for the moment for Ram to be away so you could enjoy me for your own selfish, sinful purposes."
आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि जब राम चले जाएं तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरा भोग करना चाहते थे.
When Lakshman heard this, his heart was cracked into 100,000,000,000 pieces.
जब लक्ष्मण ने सुना तो उसके हृदय के हजारों टुकड़े हो गए.
How could his own worshipable goddess speak like this against him?
कैसे उनकी पूजनीय देवी उनके विरुद्ध इस तरीके से बोल सकती है.
Through all the 13 years they were in the forest, he never looked above her lotus feet.
क्योंकि 14 वर्ष जब जंगल में थे तब उन्होंने उनके चरण कमल से ऊपर नजर भी नहीं डाली थी.
He worshipped her on the throne of his heart as the consort of his beloved Lord Ram.
अपने हृदय के गद्दी पर हमेशा उनकी आराधना की.
She said, "If you do not go, rather than be touched by you, I will commit suicide immediately."
अगर आप नहीं जाओगे तो आपके द्वारा स्पर्श किए जाने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी इसी समय.
Lakshman said that dealing with Matajis is very difficult.
वो लक्ष्मण कहने लगे कि माताजी के साथ व्यवहार करना बड़ा मुश्किल होता है.
I have to go, but when I come back, you'll be gone.
मैं तो जाऊंगा ही लेकिन मैं जब चला जाऊंगा तब आप भी चले जाएंगे.
And it is said that he drew line with his arrow. Lakshman Rekha. That is also here in Panchavati.
और उन्होंने अपने धनुष से एक रेखा डाली जो यहाँ पर है लक्ष्मण रेखा.
And the place that Sita was kept is called Sita Harana.
और यहाँ पर सीता को रखा गया था वो सीता हरणा कहा जाता है.
After Lakshman left Ravana, he disguised himself as Sadhu.
और रावण जो है एक साधु के रूप में सीता का हरण करने आए.
He had great powers.
उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी.
Ravana had 10 heads and 20 arms.
उनके 10 सिर थे 20 भुजाएं थे.
And in this way he transformed his body into that of a very peaceful looking one-headed sadhu.
और अपने रूप को बदल दिया एक शांत एक सिर वाले साधु के रूप में.
And he had begging bowl and japamala.
उनके हाथ में जपमाला और भिक्षा पात्र.
And he came to Sita because he knew Sita and Ram were always very much charitable toward Brahmins and sadhus.
वो जानता था कि सीता और राम साधु और ब्राह्मण के प्रति बहुत उदारशील रहे हैं.
It was there at Sita Harana in Panchavati Nasik that Ravana said, "Oh Mata, I am so hungry. Please give me some food."
तो रावण इस तरह कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ माता, मुझे कुछ भोजन दीजिए.
She said, "You come," but he couldn't cross the line.
उन्होंने कहा आप आइए, लेकिन वो रेखा को पार नहीं कर पाते थे.
And she came. He said, "Oh, you will have to bring it to me because I am too weak to come to you."
रावण कहने लगा कि आपको मुझे देने के लिए बाहर आना होगा क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ.
So Sita collected some nice prasad.
सीता ने कुछ अच्छा प्रसाद लिया.
And she brought it to him.
और रावण को आकर देने लगी.
And she said, "Please tell me, who are you?"
और पूछा कि आप कौन हैं?
And he said, "I am Ravana."
और बोला मैं रावण हूँ.
Then he manifested his 10-armed rakshasa form.
और उसने फिर अपना राक्षस का रूप धारण किया.
And said, "You come with me and be my queen."
चलो मेरे साथ और मेरी रानी बनो.
She said, "I will never leave Ram."
उसने कहा नहीं, मैं राम को कभी नहीं छोड़ सकती.
Better you have no chance of taking me as your queen. Ram is the supreme lord. He's just on his way back. You better get out of here before he kills you.
तुम्हारे लिए कोई अवसर नहीं है. राम शीघ्र ही आने वाले हैं. जल्दी चले जाओ नहीं तो राम तुम्हारा वध कर देंगे.
I cannot think of any other man but Lord Sri Ramchandra.
मैं भगवान श्री राम के अलावा और किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती.
So it was here that this famous episode of Ramayana took place where Ravana kidnapped Sita and took her away.
यहाँ पर रामायण की घटना घटी जहाँ पर रावण ने सीता का हरण करके उनको लेकर गए.
And just close to here at Thakate, that is where Jatayu gave his life to defend Sita.
यहाँ पर पास में स्थान है ताकेत, यहाँ पर जटायु ने अपना जीवन दिया सीता की रक्षा करने के प्रयास में.
Also here at Nasik, it is the place where the drop of nectar from Dhanvantari's pot fell into the Sangam.
यहाँ पर ये नासिक में स्थान है संगम में जहाँ पर कि अमृत का एक बूंद जो है धन्वंतरी से यहाँ गिरा था.
And the place where the holy river Godavari flows down from Brahmagiri.
और यहाँ पर ब्रह्मगिरी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है.
This particular verse of Gita is explaining how the perfection of life is to always remember Krishna.
ये जो श्लोक है आज गीता का हम पढ़ रहे हैं उसमें बताया गया है कि पूर्णता है हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना.
To fix our mind on the personal form of the Lord and worship Him with transcendental faith.
भगवान के निजी रूप पर ध्यान करना और दिव्य श्रद्धा से उनकी आराधना करना.
This is the purushartha siromani. It is the crown jewel of all perfections.
ये सब प्रकार के जो पूर्णता है उसका शिरोमणि है.
There is a very beautiful story.
ऐसी एक बहुत सुंदर कथा है.
Of such a person who attained perfection.
ऐसे व्यक्ति की जिसने पूर्णता प्राप्त की.
In fact, it took place right on the very banks of this Godavari River.
और वो यहाँ गोदावरी के तट के ऊपर ये लीला हुई.
Srila Rupa Goswami explains this story.
श्री रूप गोस्वामी ये कथा को बताते हैं.
There was a very poor Brahmin.
एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे.
He was residing on Godavari.
वो गोदावरी के तट पे वास करते थे.
He didn't even have a home.
उनके पास घर भी नहीं था।
He had no possessions whatsoever.
उनके पास कुछ नहीं था अपना कहने के लिए।
All he had was bhakti.
सिर्फ उनके पास भक्ति थी।
So he wanted, he was always immersed in fixing his mind on worshiping the form of Lord Krishna.
वो अपने मन को हमेशा भगवान कृष्ण की आराधना में लगाए रखते थे।
So one day he decided he wanted to offer Lord Narayan a very nice feast.
उन्होंने सोचा कि मैं भगवान नारायण को बहुत अच्छा भोजन खिलाना चाहता हूँ।
But he didn't even have one grain of rice.
उनके पास अनाज का एक दाना भी नहीं था।
He didn't have a kitchen.
उनके पास न रसोई घर था।
He didn't have a single pot or vessel to cook.
और कोई बर्तन भी नहीं था पकाने के लिए।
But he didn't have a single paisa.
और पैसा भी नहीं था खरीदी करने।
But do you think that's an impediment?
आप क्या सोचते हैं ये कोई बाधा है?
How many would you of you would think that is an impediment to cook a feast?
आपको क्या लगता है किसी को बाधा लगता है तो हाथ ऊपर करके बताइएगा कोई बाधा है?
Very well. Nothing is impediment for one who has devotion.
जिसके पास भक्ति है उसके लिए कोई बाधा नहीं हो सकती।
What he did is he sat down.
वो बैठ गए।
He closed his eyes.
अपनी आँखों को मूंद लिया।
Without his mind deviating even for a moment, he went right into the process of cooking a feast for Lord Narayan.
अपने मन को उन्होंने केंद्रित किया भगवान के लिए एक बहुत सुंदर भोजन बनाने में।
First he went to the marketplace.
पहले वो मार्केट में गए।
His body was sitting under a tree on Godavari.
उनका शरीर तो गोदावरी के तट के ऊपर ध्यान में लगा था।
But it is mind he walked to the marketplace.
लेकिन मन में वो मार्केट की ओर निकल पड़े।
He selected the best vegetables.
सबसे अच्छी सब्जियां खरीद।
Nice milk from cows.
और गाय का अच्छा दूध लिया।
Wonderful spices and herbs and fruits.
मसाले फल जड़ी बूटियां।
Best quality rice.
सबसे अच्छे क्वालिटी का चावल।
And then he brought it back and started cutting them up.
और फिर लाकर उनको काटने लगा।
And then he started preparing.
और फिर पकाने लगे।
He prepared halwa.
उन्होंने हलवा बनाया।
Pakoras.
Puris.
So many sabjis.
अलग-अलग प्रकार के सब्जी।
Chutneys. So many preparations, more and more preparations.
बहुत बहुत प्रकार के चीजें बनाई।
लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन।
लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन।
Very good translation. This is the only part of the translation I can understand.
बोले यही अनुवाद मुझे समझ में आ रहा है।
So then he cooked the most important preparation.
और उन्हें सबसे फिर important item बाद में बनाया।
Paramana.
उसको परमाना कहते हैं।
Among sadhus, kheer is called paramana.
साधुओं में खीर को परमाना कहा जाता है।
When I was traveling and living, wandering around India as sadhu, whenever there was an utsav, a pangat where the sadhus would come together for prasad, it was always very much a concern whether there was paramana.
जब महाराज बता रहे जब मैं साधु के रूप में भ्रमण कर रहा था कहीं उत्सव होता कोई भंडारा या पंगत होता तो मेरा ये हमेरा हमेशा ये होता कि क्या परमाना है या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़
supreme most auspicious of all prasad.
सब प्रसाद में सबसे मंगलकारी ये परमाना माना जाता था.
So he was offering this, he wanted to make it perfect for the Lord.
वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते थे।
Now, paramana is best when it's very refreshingly cold.
और परमाना अच्छा तब लगता है जब वो बहुत ठंडा हो एकदम।
And it was his bhava that he didn't want to offer it hot. He wanted it nice and cool for the pleasure of the Lord.
उनकी भावना थी कि भगवान को गरम-गरम नहीं देना चाहता, ठंडा एकदम अच्छी तरह से ठंडा करके फिर अर्पण करना चाहिए।
He was so careful in his mind to make every preparation so perfect for the pleasure of the Lord.
वो अपने मन में हर एक चीज को इतना सुंदर बना रहे थे भगवान को आनंद देने के लिए।
So when all the entire bhoga offering was complete, he wanted to make sure that the paramana was cool.
तो सब जब भोग तैयार था तब वो देखना चाहते थे कि परमाना ये ठंडा हुआ है कि नहीं.
In his meditation, he touched the paramana with his finger.
और ध्यान में उन्होंने अपनी उंगली से परमाना को स्पर्श करके देखना चाहा.
But it was so hot that it burned his finger.
वो इतना गर्म था कि उसकी उंगली जल गई.
It burned him so much that it forced him to break his whole meditation.
इतना उसका हाथ जल गया कि पूरा ध्यान भंग हो गया.
And there he was, sitting again on the bank of Godavari.
और फिर देखा मैं गोदावरी के तट पर बैठा हूँ.
And he looked at his finger, and his finger was burnt.
अपनी उंगली को देखा, उनकी उंगली जल गई थी.
In his meditation, he touched it with his finger, and when he came out of meditation, his actual physical finger was burnt.
वो ध्यान में उन्होंने उंगली डाली थी, लेकिन जब वो ध्यान से बाहर निकले तो वास्तव में देखा कि उंगली बिल्कुल जल गई थी.
He was completely confused. How is this possible? What's happening?
वो खुद भ्रमित हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है.
Meanwhile, in Vaikuntha, Lord Narayan was sitting with Lakshmi Devi.
वैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी देवी के साथ निवास कर रहे थे.
And श्रीमान सुंदर नारायण began to laugh. Very, very jovial laughter.
श्रीमान सुंदर नारायण भगवान जो है वो मजाक करते हुए हंसने लगे जोर जोर से.
Lakshmi was wondering, we are sitting together, why all of a sudden you're laughing, laughing, laughing like this?
लक्ष्मी जी सोचने लगे, हम लोग साथ में बैठे हैं, क्या अचानक जोर से हंसते जा रहे हैं, क्या हो गया?
What is this hasti ras?
ये क्या हो रहा है इस तरीके से?
He showed, I'm laughing, look at that Brahman down there.
मैं इसलिए हंस रहा हूँ, देखो ब्राह्मण नीचे जो बैठा है उसको देखकर.
I appeared in his, I was there accepting all of his offerings that he was making in his mind.
जो मन में जो भी अर्पण कर रहा था मैं उसको स्वीकार कर रहा था.
And it is my leela that I made that sweet rice so hot that he burnt his finger.
अरे मेरी लीला थी, मैंने उसको इतना गर्म बना दिया इसकी उंगली जल गई.
And now he's so bewildered how his finger is burnt.
अब वो भ्रमित हो गया, उसको पता नहीं चल रहा कैसे उंगली जल गई.
He said, this devotee is so pure.
ये भक्त इतना शुद्ध है.
That everything he's offering in his mind, I am accepting.
जो भी वो मन में अर्पण कर रहे हैं मैं स्वीकार कर रहा हूँ.
And I am enjoying like supreme enjoyment.
मैं ये परम भोग को स्वीकार कर रहा हूँ.
Because his devotion and his humility is so rich, although physically he's so poor.
नम्रता और भक्ति बहुत ज्यादा है उसमें, हालांकि वो गरीब है.
Lord Narayan then said to Lakshmi, let us bring him to Vaikuntha at this very moment.
फिर भगवान नारायण लक्ष्मी से कहा, इसको अभी हम वैकुंठ ले चलते हैं.
They sent a celestial plane, airplane, that picked him up and brought him right to Vaikuntha.
उन्होंने दिव्य विमान भेजा जो कि उनको लेकर वैकुंठ ले आया.
He achieved the ultimate perfection of life.
उनको जीवन की पूर्णता प्राप्त हो गई.
Duryodhana, he made such a feast for Krishna.
दुर्योधन ने बहुत सुंदर फीस्ट बनाया कृष्ण के लिए.
He was not a Brahmin sitting on the bank of Godavari with no rupees. Duryodhana was the king of the world.
दुर्योधन ऐसे नहीं है कि नदी के तट पर बैठे हैं, वो तो पूरे दुनिया के राजा थे.
The finest cooks, the finest ingredients, the finest preparations. He made a feast that was never cooked before.
उन्होंने इतने सारे अच्छी चीजें व्यंजन ले आए, अच्छी तरह से भोग बनाए और सब प्रकार अच्छी तरह से बनाने वाले ले आए और ऐसे भोग अर्पण किया.
कृष्ण would not even look at it.
कृष्ण उसकी ओर देखे ही नहीं.
He would not accept one morsel of it.
और उसका एक दाना भी नहीं लिया.
Because there was no bhakti.
उसमें भक्ति नहीं थी.
But Vidura, he was willing to accept. He went to Vidura's house instead.
और विदुर के घर गए और विदुर के घर में स्वीकार किया.
Vidura's wife was so nervous that Krishna's come and we have no prasad ready for him. It's unexpected.
विदुर की पत्नी बहुत विच्छेदित हो गई थी कि हमारे पास कुछ अर्पण करने के लिए नहीं है.
She had some bananas.
वो कुछ केले थे.
But she was so nervous, she peeled the bananas, threw the banana away and gave Krishna the peel.
और वो इतने नर्वस हो गए थे कि वो बनाने केला के जो छिलके हैं वो खिला रहे थे भगवान को और बाकी अंदर का भाग फेंक रहे थे.
And in great ecstasy, Krishna ate it.
और कृष्ण ने बड़े आनंद से उसको स्वीकार किया
बिकॉज इट वॉज ऑफर्ड विद डिवोशन
क्योंकि उसका प्रेम और भक्ति से भरा हृदय था
इन अ पर्सनल वे टू हिज पर्सनल फॉर्म
एक व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति अर्पण किया जा रहा था
मयावेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते सदया परयोपेतास्थे में युक्त तमामतः वन हुज माइंड इज फिक्स्ड इन माय पर्सनल फॉर्म And worships me with great and transcendental faith is considered by me to be the most perfect.
जो व्यक्ति मेरे निजी रूप में ध्यान कर रहे हैं और दिव्य श्रद्धा के साथ वो सबसे ज्यादा पूर्ण है.
In the path of bhakti, there is no impediment that can separate you from Krishna.
भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है जो आपको कृष्ण से अलग कर सकता है.
Except for our own unwillingness.
सिर्फ एक ही है कि अगर हमारी स्वयं की इच्छा नहीं हो
एवरी इम्पेडिमेंट दैट कम्स इन आवर पाथ एक्चुअली ब्रिंग्स अस क्लोजर टू कृष्ण इफ वी आर सिंसियर
अगर हम सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं तो जो भी बाधा आती है वो हमें कृष्ण के और करीब ले आती है
बिकॉज कृष्ण ओनली वांट्स आवर सिंसियर एफर्ट आवर लव
कृष्ण हमारे सच्चे प्रयास और प्रेम के भूखे हैं
ही वांट्स अस टू फिक्स आवर कॉन्शियसनेस ऑन रिमेंबरिंग हिम एंड ट्राइंग टू प्लीज हिम
वो चाहते हैं कि हम अपनी चेतना को उनके स्मरण में और उनको प्रसन्न करने में लगाएं।
That's all.
बस यही वो चाहते हैं
अनान्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् If we sincerely try to worship the form of the Lord, then Krishna will be pleased. And whatever we don't have, He will supply.
अगर हम सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न होंगे और जो हमारे पास नहीं है वो दे देंगे अपने आप
Whatever we have, he will protect.
और जो है उसकी रक्षा भी वही करेंगे
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयाश्चति तदहं भक्ति पाहेतम अश्नामि प्रयतात्मनः कृष्ण says, if one offers to me with love and devotion Even a leaf, a fruit, a flower, or water, I will accept it.
Krishna कहते हैं कि कोई प्रेम से पत्ता, फल, जल या फूल अर्पण करता है, प्रेम से तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ.
The Lord is Bhaktavatsal.
भगवान भक्तवत्सल हैं.
He is always eager to give himself to his devotee.
वो अपने आप को अपने भक्तों को सौंपने के लिए उत्सुक हैं.
The power of bhakti. Conquers even God.
भक्ति की जो शक्ति है वो भगवान को भी जीत लेती है.
Humility conquers even the Supreme Lord.
नम्रता जो है वो भगवान को भी जीत लेती है.
That is his own sweet will.
ये उनके स्वयं की इच्छा से है.
In Vrindavan we find Yashoda Mai is tying Krishna with rope around the waist and he can't get out.
और हम वृंदावन में देखते हैं यशोदा माता कृष्ण को रस्सी से बांध रहे हैं और कृष्ण फिर छूट नहीं पाते
Actually, Krishna can get out.
वास्तव में कृष्ण बाहर निकल सकते हैं.
But he doesn't want to get out.
लेकिन वो बाहर निकलना नहीं चाहते रस्सी.
He wants to be captured by the ropes of Yashoda Mai.
यशोदा माता की रस्सियों से बंधे जाना चाहते हैं.
When the gopas play with Krishna, sometimes they wrestle with him.
कभी-कभी कृष्ण के ग्वाल बाल उनके साथ कुश्ती खेलते हैं.
And Krishna loses the wrestling match.
और उस कुश्ती में कृष्ण हार जाते हैं.
Did Krishna really lose?
क्या वास्तव में कृष्ण पराजित हुए?
Yes, he did.
हाँ, वो सही है.
By his own sweet will.
अपनी स्वेच्छा से.
Not that he doesn't want. Not that he cannot win.
ऐसा नहीं है कि वो जीत नहीं सकते.
He killed Hiranyakashipu.
उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया.
Killed Hiranyaksha.
हिरण्याक्ष को मार दिया.
Ravana.
रावण को मार.
He killed Kumbhakarna.
और कुंभकर्ण को भी मार.
He can't defeat. Little cowherd boy in a wrestling match?
और क्या वो भगवान छोटे ग्वाल बालों को नहीं हरा सकते?
As Mahavishnu, he just breathes inside, and the entire cosmic manifestation is destroyed.
और महाविष्णु के रूप में श्वास अंदर लेते हैं तो पूरे सृष्टि का नाश हो जाता है.
Krishna is the source of these avatars.
कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं.
Certainly, he can beat up Shridama.
निश्चित रूप से श्रीदामा की पिटाई कर सकते हैं.
But Because Shridama is wrestling him with love.
Shridama prem se kushti lad rahe hain.
Krishna is defeated.
Krishna parajit ho jate hain.
And it becomes the news all over Vrindavan. Krishna is defeated.
और वृंदावन में समाचार फैल जाता है कृष्ण हार गए.
And everyone feels great ecstasy to hear this.
और सबको बड़ा आनंद होता है ये समाचार सुन के.
Krishna feels greatest ecstasy.
और कृष्ण को भी सबसे ज्यादा आनंद होता है.
If Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana, Kumbhakarna, if they fought Krishna with love, he would have let them win.
और अगर ये भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ये भी अगर प्रेम से लड़ रहे होते तो कृष्ण पराजित होने के लिए
तैयार हो जाते. भक्ति
लेकिन उन्हें भक्ति नहीं.
They were destroyed.
उनका नाश हो गया.
Very bad destruction.
बहुत बुरा नाश हुआ.
Kumbhakarna, his head was cut off, his arms were cut off, his legs was cut off, his mouth was filled with arrows.
कुंभकर्ण के हाथ पैर सिर सब काट दिए गए और मुंह के ऊपर सब तीर मारे गए.
Very bold. Hiranyaksha, his heart was over there, his intestines were over here, and his body was laying over there.
जैसे हिरण्याक्ष का भी जो है सब हृदय निकाला हुआ था और उनकी हड्डियां निकाले हुए.
But Sri Rama, he's jumping on Krishna, going like this, and Krishna's going, I give up.
अरे Sri Rama लड़ाई करते कृष्ण कहते हैं मैं हार गया.
Because love.
क्योंकि प्रेम.
Just like a father, if a father wrestles with little child, easily the father can go and kill the child within a second.
अगर पिता पुत्र से लड़ाई करता है तो एक सेकंड में उसको पिटाई करके उसको मार सकता है.
But does that give pleasure to the father?
क्या इससे पिता को आनंद मिलेगा?
But because of the love between the child and the father will let the child climb on him, and the child will go like this, and the father will go, oh, I give up, I cannot win, please, let go.
और पुत्र जो इस तरह पिता के ऊपर चढ़ जाता है और पिता बोलता है मैं हार गया, आप मेरे को छोड़ दीजिए, बस अब छोड़ दीजिए.
That's love.
ये प्रेम है.
It's to please the child.
वो बच्चे को आनंद देने के लिए.
So Krishna is conquered by bhakti.
कृष्ण भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं.
And that bhakti is very simple.
और भक्ति बहुत सरल है.
It is described in this verse.
वो इस श्लोक में वर्णन किया गया.
That we keep our mind in a humble state, fixed on the personal form of the Lord.
एक नम्र स्थिति में मन को रखकर कृष्ण के ऊपर ध्यान रखें.
And we worship that personal form with great and transcendental faith.
और बड़े दिव्य श्रद्धा के साथ उस रूप की आराधना करें.
Faith that if I please Krishna, all of my desires will be fulfilled.
ये श्रद्धा होनी चाहिए अगर मैं कृष्ण की आराधना करूंगा प्रसन्न करूंगा तो सब मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी.
Not my senses desires, my soul's desires.
इंद्रियों की इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मा की इच्छा.
We are not this body.
हम ये शरीर नहीं है.
The body is just a temporary vehicle.
ये शरीर तो थोड़े समय के लिए वाहन है.
Soul is the life force.
आत्मा जो है वो प्राण है.
The soul is longing for that love of God.
आत्मा जो है भगवान के प्रेम के लिए लालायित है.
But because we have forgotten Bhagwan, the soul is trying to look for that love somewhere else, in someone else.
वो आत्मा जो है दूसरी जगह पर उस प्रेम की तलाश में है.
But no one else can replace Krishna.
लेकिन कृष्ण के अलावा कोई ये प्रेम नहीं दे सकता.
Because everything else is temporary.
हर एक दूसरी चीज क्षणिक है.
But when that same propensity to love is just directed again toward its source, Krishna, then the ultimate satisfaction of the soul's desires is achieved.
जब प्रेम की प्रवृत्ति फिर से कृष्ण की ओर मुड़ जाती है तो आत्मा की अंदरूनी इच्छाएं जो पूर्ण होने लगती हैं.
So bhakti is the process by which we clean our heart.
भक्ति एक तरीका है जिससे हम अपने हृदय का मार्जन करते हैं.
And with that clean heart, our natural propensity to love God and pure knowledge of God and the ecstasy of that love is awakened.
और इस भक्ति के द्वारा सच्चा प्रेम और ज्ञान और भावनाएं जागृत हो जाती हैं.
And the simplest method of fixing our mind on the Lord and cleaning our heart in this age of Kali is to chant the names of the Lord.
और इस कलयुग में भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने और हृदय को साफ करने के लिए तरीका है भगवान के नामों का कीर्तन करना.
There are many names of the Lord.
भगवान के अनेक नाम हैं.
They are all invested with the divine power and opulence of the Lord's presence.
उनके सबके अंदर भगवान के ऐश्वर्य और शक्ति मौजूद हैं.
Especially according to Kali Santarana Upanishad and other great Vedic literatures, in this age of Kali, the Mahamantra is very, very effective in purifying our hearts.
कलि संकरण उपनिषद के अनुसार विशेष करके ये महामंत्र जो है हृदय के शुद्धिकरण के लिए बहुत उपयोगी है.
In helping us to fix our consciousness on Krishna and awaken that desire to worship him with transcendental faith.
और ये हृदय को भगवान में केंद्रित करने के लिए और दिव्य श्रद्धा को जागृत करने के लिए बहुत उपयोगी है.
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Whether we are rich or poor,
चाहे अमीर हो गरीब हो,
whether we are man or woman,
पुरुष स्त्री हो,
whether we are old or young,
या वृद्ध हो या नौजवान हो,
whether we are Indian or Pakistani or American or Russian,
चाहे भारतीय पाकिस्तानी अमेरिकन रशियन कोई भी हो,
or African,
और अफ्रीकन हो,
whether we are from Brahmin caste, Kshatriya class, Vaishya class, Shudra class, or outcast,
चाहे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ये से भी नीचे जाति में हो,
whether we are PhD academic scholars, professors, or whether we cannot even read or write.
चाहे हम PhD बड़े विद्वान हो या निरक्षर हो,
whether we are very healthy or very sickly,
या स्वास्थ्य अच्छा हो या बीमार हो,
whether we have very beautiful body or whether we are just old people like that.
चाहे हमारा शरीर बहुत सुंदर हो या वृद्ध हो,
none of these material considerations have any relevance.
ये सब भौतिक चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता.
Because the soul is separate from all these artificial designations.
क्योंकि आत्मा इन सब चीजों से अलग है.
The chanting of Hare Krishna awakens the instinct of the soul.
आत्मा जो हरे कृष्णा कीर्तन है वो आत्मा की भावनाओं को जागृत करता है.
So this Mahamantra